الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو یہ ہماری درس قرآن کی کلاس ہوتی ہے جو کہ ایک تربیتی سلسلے کا حصہ ہی ہے، تو یہ صرف ایک معلومات پہنچانے کے مقصد سے کلاس نہیں کی جاتی، بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایسے موضوعات کو چھیڑا جائے کہ جس سے کہ ہماری سوچ کی اصلاح ہو سکے، ہمارے فکر کی اصلاح ہو سکے، اور ہمارے اعمال کے اوپر بھی اس اصلاح کا اثر پڑ سکے. اب نیت یہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کلاس کو جو ہماری عالمات کے بیچز ہیں ان کے لیے بھی مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے. تو ان کے جو عالمات کے کلاسز ہوتی ہیں ان کو بھی اس ٹائم پہ موقوف کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس دین اسینشلز فار ویمن کے سلسلے والی یہ کلاس لے سکیں. تو یہ پیر کو درس قرآن کی شکل میں ہوتی ہے، اور بدھ کو جو ہے یہ مثالی بیوی کی شکل میں آج کل چل رہی ہے. اس تھوڑی سی تمہید کے ساتھ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے پچھلی کلاس میں چھوڑا تھا، کہ مختصر واقعہ معراج ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ہی آیت کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرفت القرآن جلد نمبر 6 سے، اور اس میں واقعہ معراج کی تفصیل پڑھنے ہم نے شروع کر دی تھی. ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آئی تھی جو آپ سے پچھلی کلاس میں بیان نہیں کر سکے تھے، وہ یہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں پہنچے، ٹھیک ہے، تو لکھا میں نے کہ وہاں پہ 2 رکعت جو ہے وہ تحیت المسجد کی ادا کری، جو کہ مسجد میں داخل ہو کر کے اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو تو تحیت المسجد کی 2 رکعت ادا کرنا جو ہے یہ مستحب ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے. جیسے تحیت الوضو ہے، اب عورتیں جو ہیں وہ تو مسجد میں نہیں جاتی، تو وہ تحیت المسجد تو عام طور پہ نہیں پڑھیں گے انلیس کہ ان کو جانا پڑ جائے کسی وجہ سے، لیکن تحیت الوضو جو ہے یہ تو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ جب وضو کیا اور مکروہ وقت نہیں ہے نماز کا تو 2 رکعت جو ہے وہ تحیت الوضو کی نیت سے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. تو آپ جب وہاں پہ گئے اور تحیت المسجد پڑھی تو وہ اس وقت قبلہ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو قبلہ کس طرف تھا، تو یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن عین ممکن ہے، قرین قیاس ہے، قیاس کے قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ بیت المقدس ہی اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا، ٹھیک ہے، تو اب تو بیت المقدس کے اندر موجود تھے، تو اب کس طرف رک کر کے نماز پڑھی ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی چاہت جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کی چاہت تھی. تو اب اس کے قبلہ کیا تھا کعبۃ اللہ، بلکہ شاید میں نے کہیں پڑھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ بیت المقدس کی جو مسجد ہے اس کی ڈائریکشن قدرتن ہے ہی کعبۃ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسٹ لائکلی کعبۃ اللہ کی ڈائریکشن میں نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جب مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے نا، ہجرت سے پہلے، اور جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، تو اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ شاید کسی کو آپ میں سے پتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس مقام پر کھڑے ہوتے تھے جو حجر اسود اور رکن یمانی، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایڈجسنٹ کارنرز بنتے ہیں نا، حجر اسود کا کارنر اور اس سے پہلے جو ہے وہ رکن یمانی کا، اگر آپ طواف کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو رکن یمانی پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا کارنر جو ہے وہ حجر اسود کا آتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان اگر کوئی کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی ڈائریکشن میں نماز پڑھے نا، تو یہ ڈائریکشن وہی ہے کہ جو کہ بیت المقدس کی طرف جاتی ہے، ठीक है, तो पहले जो है वो ऑब्वियसली आप सामने खड़े हुए हैं काबतुल्लाह के, तो काबतुल्लाह सामने आ जाएगा और पीछे उसके बैतुल मुकद्दस आएगा। तो इस तरह से ना नबी अलैहिस्सलाम दोनों किबलों को जमा कर लिया करते थे अपनी नमाज के अंदर। तो इतनी चाहत थी नबी अलैहिस्सलाम की कि काबतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़े। ठीक है, अच्छा ये बात जो है वो मशाइख को भी पता है। तो हमारे हजरत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत रकातहुम जिस ज़माने में, अभी तो तबीयत वगैरह बहुत ख़राब हो गई है और सेहत जो है वो बहुत डाउन है, बुढ़ापा भी बहुत हो गया है और अब जो है वहाँ पे जाना भी इतना आसान नहीं होता। अब तो मुताफ़ के अंदर आप जा भी नहीं सकते, बल्कि सिवाय इसके कि आप उम्रे का एहराम बांधे हुए हो, व्हील चेयर वाले तो मुताफ़ में जा भी नहीं सकते। ठीक है, तो लेकिन जिस ज़माने में हजरत मुताफ में जाते थे और लंबा लंबा बैठते थे ना, तो उस वक्त भी इसी जगह पे जाकर के बैठते थे जहां पे के सामने काबतुल्ला होता था और पीछे जो है वो बैतुल मुकद्दस होता था, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को यही वाली जगह पसंद थी। तो यहीं बैठ करके जो है ना वो काबतुल्ला को देखते रहते थे। काबतुल्ला को देखने का भी सवाब होता है और जिन लोगों ने मुलाकात करनी होती थी, बात करनी होती थी, तो वहीं पे आकर के फिर हजरत के साथ बैठ करके जो है वो बातचीत भी किया करते थे। अल्लाह ताला ने इस फकीर को भी अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक अता फरमाई। तो अब हम जो पढ़ रहे थे तो उसमें आगे बढ़ते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोजख का बचश्मे खुद मुआयना फरमाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अव्वल 50 नमाजों के फर्ज होने का हुक्म मिला, फिर तखफीफ करके 5 कर दी गई। है ना, ये वाकया उम्मीद है कि मेराज का सबको पता होगा कि पहले 50 नमाजें, फिर नबी अलैहिस्सलाम सलाम जब अल्लाह ताला से 50 नमाजों का तोहफा लेकर के खुशी खुशी वापस आ रहे हैं, भाई अपने महबूब से जो है वो तोहफा मिला है तो वापस आ रहे हैं। अब जो भी तोहफा मिला हो, बड़ा मिला हो, छोटा मिला हो, यानी मुश्किल मिला हो, आसान मिला हो, भाई तोहफा तो तोहफा होता है, वो भी महबूब का दिया हुआ है, महबूब हकीकी का दिया हुआ। तो आराम आराम से खुश खुश वापस आ रहे हैं और छठे आसमान पे पहुंचते हैं तो वहां पर हजरत मूसा अलैहि सलाम की मुलाकात होती है। और मूसा अलैहि सलाम तो अल्लाह ताला के आशिक सादिक थे, तो नबी अलैहि सलाम को देखा, उन आंखों को देखा जो आंखें महबूब हकीकी को देख करके आई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी दिल में एक बड़ा मज़े का ख्याल आया और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप क्या लेकर के आए हैं वहां से। आपने फरमाया कि मैं तो 50 नमाजों का तोहफा लेकर के आया हूँ। तो उन्होंने फरमाया आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, मेरी उम्मत तो 2 नमाजें नहीं पढ़ पाती, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ेगी, आप ऐसा करें वापस जाएं और उसको कम करवा के आए। नबी अलैहिस्सलाम वापस ऊपर गए, है ना, यानी क्या मतलब आमदोरफ्त लगी हुई थी, कोई एलिवेटर था, इधर बटन दबाया ऊपर पहुंच गए, फिर उधर बटन दबाया नीचे पहुंच गए, फिर ऊपर पहुंच गए, फिर नीचे पहुंच गए, फिर ऊपर पहुंच गए, फिर नीचे पहुंच गए। तो इस तरह से 50 से 45 हुई, 45 से 40 हुई, 40 से 35 हुई, 35 से 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, है ना। और 5 के बाद भी उन्होंने कहा कि वापस जाइए, मैं तो आपकी आंखों को बार बार देखना चाहता हूँ जो कि अल्लाह के पास से होके आती हैं, अल्लाह को देख के आती हैं। अल्लाह को तो मैं ना देख सका, लेकिन अल्लाह को देखने वाली आंखों को तो देखता रहो ना बार बार। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है, अब 5 से कम करवाते हुए मुझे शर्म आती है। तो 5 लेकर के आप जो है वो वापस दुनिया में तशरीफ लाए। तो इससे तमाम इबादात के अंदर नमाज की खास अहमियत और फजीलत साबित होती है। ठीक है, इसी वजह से इंसान के ऊपर जो भी हालात आए ना, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी है। ठीक है ना, ख्वातीन को तो अल्लाह ताला ने वैसी तख़फीफ करी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर वो वाले हालात नहीं, वो वाला यानी अयाम के का मसला नहीं है, तो दर्द है, तकलीफ है, दिल नहीं चाह रहा, डिप्रेशन सवार हुई हुई है, बच्चों ने तंग किया हुआ है, शौहर ने तंग किया हुआ है, ससुराल ने तंग किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, नमाज नहीं छोड़ सकते, है ना। अच्छा, इसमें भी ख्याल रखें कि फर्ज नमाज, देखें मुश्किल हालात आए हुए हैं, तकलीफ हुई हुई है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो नफले छोड़ सकते हैं, नफले छोड़ सकते हैं, फर्ज नहीं छोड़ सकते। कुछ लोगों ने ना पूरे के पूरे पैकेज को जो है वो फर्ज बना दिया है, पूरा पैकेज, यानी जोहर की 4 सुन्नत पहले वाली, फिर 2 सुन्नत बाद में वाली, है ना, तो उसको भी फर्ज में शामिल कर दिया एज इफ कि वो भी फर्ज है ना। और मगरिब के बाद 2 रकत सुन्नतें और 2 रकत नफिल जो है ना, उन सबको, यानी मगरिब की नमाज मीन्स 3 + 2 + 2, भाई फर्ज नमाज इज ओनली 3, ठीक है ना, और हालात अच्छे हैं तो आप सुन्नत पढ़ें, आप नफिल पढ़ें, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो ना हो ना कि अगर मुश्किल में है, वक्त कम है और तकलीफ में है, तो अब जो है ना वो 7 नमाजों का, 7 रिकतों का ख्याल करके जो है वो आपने फर्जी छोड़ दी। भाई 3 रिकत पढ़ लें, फर्ज नमाज तो किसी सूरत में नहीं छोड़ सकते ना, उसको कम कर सकते हैं, यानी खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ सकते हैं, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ सकते हैं, लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ सकते हैं खाली, ठीक है। लेकिन छोड़ नहीं सकते, नमाज को छोड़ नहीं सकते। कुछ लोग नमाज को छोड़ यानी फर्ज नमाज को छोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलती जो है वो हरगिज हरगिज ना करे कोई भी। तो क्या फरमाया, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा था जी। सहाबा कराम के दरमियान जो है वो इख्तलाफ राय तो है इसके ऊपर, लेकिन कुछ सहाबा का जो है ना इसके ऊपर यानी यही इत्तेफाक है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा था, ठीक है। और कुछ दूसरे सहाबा के मुताबिक है देखा नहीं था, लेकिन ये एक इल्मी इख्तिलाफ है। तो भाई हम उन लोगों को क्यों नहीं फॉलो कर सकते जिन्होंने देखने के वाले राय को इख्तियार किया है, वो भी तो सहाबा ही थे ना। अच्छा आगे फरमाते हैं कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस बैतुल मुकद्दस में उतरे, और जिन अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ मुख्तलिफ आसमानों में मुलाकात हुई थी वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उतरे, गोया आपको रुख्सत करने के लिए बैतुल मुकद्दस तक साथ आए, ठीक है ना, सी ऑफ करने के लिए बैतुल मुकद्दस तक साथ आए। बैतुल मुकद्दस जो था वो इन तमाम अंबिया कराम का यानी मरकज था, ठीक है ना। तो मरकज तक तो वापस आता है ना बंदा कम से कम। तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का वक्त हो जाने पर सब अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ नमाज अदा फरमाई। ये भी एहतमाल है कि ये नमाज उसी दिन सुबह की नमाज हो यानी फजर की नमाज हो, लेकिन ये भी एहतमाल है कि ये तहज्जुद की नमाज हो, क्योंकि तहज्जुद का भी जो अफजल वक्त है वो फजर की नमाज शुरू होने से पहले का वक्त है, और अंबिया के ऊपर तहज्जुद भी फर्ज होती है, ठीक है ना। फजर खाली फर्ज तो हमारे ऊपर होती है ना, अंबिया पर तो तहज्जुद भी फर्ज होती है, ठीक है ना। तो तहज्जुद का वक्त हो गया, इसका मतलब ये है कि सब अंबिया ने पढ़नी है भाई, ठीक है। तो अब तहज्जुद की नमाज नबी अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ी। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये इमामत अंबिया का वाकया बाज हजरात के नजदीक आसमान पर जाने से पहले पेश आया है, लेकिन जाहिर यह है कि ये वाकया वापसी के बाद हुआ, क्योंकि आसमानों पर अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वाकये में ये मनकूल है कि सब अंबिया से जिब्राइल अमीन ने आपका तारुफ करवाया, राइट, ऊपर तारुफ करवाया गया, पहले आसमान के ऊपर दूसरे आसमान के ऊपर। अगर वाकया इमामत पहले हो चुका होता तो यहाँ तआरुफ की जरूरत ना होती, और यूं भी जाहिर यही है कि इस सफर का असल मकसद तो मलाए आला में जाने का था, पहले उसी को पूरा करना अक्रब मालूम होता है, ठीक है। यानी हकीकत से ज्यादा करीब जो है ना कि नबी अलैहिस्सलाम पहले जो असल मकसद था उसको पूरा किया, ठीक है ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो पहले यानी नीचे नमाज पढ़ने की बजाय ऊपर जा करके अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद जो है ना जब असल काम से फरागत हो गई तो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम आपके साथ मुशायत रुख्सत के लिए बैतुल मुकद्दस तक आए, और आपको जिब्राइल अमीन के इशारे से सबका इमाम बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियादत और सब पर फजीलत का अमली सबूत दिया गया, ठीक है ना। सियादत यानी सादात, सरदार, सरदारी का और फजीलत का अमली सबूत दे दिया गया कि भाई इनको इनको इमाम इमाम बनाना है, ठीक है। तो जो इमाम होता है तो इमाम जो है ना वो फिर ऐसे ही शख्स को बनाना शरीयत के अंदर है कि जो कि सबसे ज्यादा अफजल हो, ठीक है। हाँ अगर कोई अफजल जो है वो किसी अपने से असगर को जो है वो आगे कर दे तो वो उसकी मर्जी है, ठीक है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी वजह से, जब आप की सेहत अच्छी नहीं थी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगे कर दिया, ठीक है। तो अफजल जो है ना वो उसकी सवाबदीद पर है कि वो असगर को आगे कर दे, लेकिन अगर अफजल मौजूद है तो अफजल ही का हक बनता है नमाज पढ़ाने का, ठीक है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस से रुखसत हुए और बुर्राक पर सवार होकर अंधेरे वक्त में मक्का मुअज्जमा पहुंच गए, ठीक है। तो अंधेरे वक्त में पहुंच गए, या तो तहज्जुद की नमाज पढ़ करके फजर शुरू होने से पहले पहुंच गए, या फजर की नमाज जो है वो अव्वल वक्त में पढ़ करके फिर उसके बाद अभी पौ फटनी शुरू नहीं हुई थी और फजर यानी अंधेरा ही बाकी था कि इतनी जल्दी में बुराक ने वापस पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये तो सफरे मेराज के मुतालिक ये सारी तफसील हो गई। आप लोगों को दीन एसेंशियल्स के ग्रुप के ऊपर हमने कुछ सीरत क्लास के लिंक्स भेजे हैं, जिनके ऊपर हमने इस मेराज की क्लास को काफ़ी तफसील के साथ, इवन स्लाइड प्रेजेंटेशंस को इस्तेमाल करते हुए और वीडियोस को इस्तेमाल करते हुए समझाया था। और बच्चों की क्लास थी वो, तो अगर आप लोगों को मौका मिले, दिल चाहे तो खुद भी उसको देख लें, या अपने घर के बच्चों को जो है वो बिठा करके कभी वो सीरत क्लासेस जो हैं वो सुनवा दें, दिखला दें। ठीक है, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो है वो किसी को फायदा हो जाए, तो हमारा भी फायदा हो जाएगा। जबान है दूसरे ग्रुप के ऊपर हमने अभी उस मैसेज को नहीं भेजा है, तो इंशाल्लाह वहां पर भी भेज देंगे। वहां पर दूसरी चीजें भी भेजना ज्यादा यानी प्रायोरिटी थी उसकी, तो इस वजह से इसको नहीं भेजा। अच्छा, अगली हेरिंग है कि वाकया मेराज के मुतालिक एक गैर मुस्लिम की शहादत। तो तफसीर इब्ने कसीर में है कि हाफिज अबू नईम अस्बहानी ने अपनी किताब दलाइल नबुवा में मोहम्मद बिन उमर वाकदी की सनद से बरवायत मोहम्मद बिन काब कर्जी ये वाकया नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह रोम कैसर के पास अपना नाम है मुबारक देकर हजरत दहिया इब्ने खलीफा रजी अल्लाह ताला उनको भेजा। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ी सी तफसीर ये लिखी हुई है कि तफसीर इब्ने कसीर, ठीक है, तफसीर इब्ने कसीर जो है वो अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की यानी तफसीर की किताब है, और ये तफसीरों में से एक में बहुत अहम तफसीर की किताब है, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो यानी क्या कहते हैं, ट्रस्ट वर्दी जिसको कहें, और बहुत ही ऑथेंटिक तफसीर की किताब है। तो उसके अंदर जो है ना इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद बिन अमर उमर वाकदी के हवाले से जो है वो एक वाक्य बयान किया है। तो नीचे जो फुटनोट है इसका, तो उसमें लिखा हुआ है कि वाकदी को रिवायत हदीस में मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है। ठीक है, यानी इनकी जो रिवायात है ना हदीस की, तो वो उस दर्जे की सनद को नहीं पहुंची हुई है कि इनकी बताई हुई हदीस को जो है वो सही हदीस कहा जा सके, ठीक है, या हसन हदीस कहा जा सके। तो इस वजह से ये एक ज़ईफ़ रावी हैं हदीस के, लेकिन इमाम इब्ने कसीर जैसे मुहतात मुहद्दिस ने उनकी रिवायत को नकल किया है, इसलिए कि इस मामले का ताल्लुक अकायद या हलाल व हराम से नहीं है, और ऐसे तारीखी मामलात में उनकी रिवायत मोतबर है। ठीक है, तो ज़ईफ़ हदीस जो है वो किसी फ़र्ज़ को साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, किसी यानी अकीदे को साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन ज़ईफ़ हदीस जो है वो किसी फजीलत की के अमल को साबित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे कि 15 शाबान की जो इबादत है, तो उसके लिए ज़ईफ़ हदीसें उम्मत ने हमेशा इस्तेमाल करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक बेसिकली तारीखी रिवायत है जिसका ना अकीदे से कोई ताल्लुक है, ना जो है वो इसका फ़र्ज़ और यानी हलाल हराम वगैरह से ताल्लुक़ है। तो अल्लामा वाकदी जो है ना, इनका यही मामला है। अल्लामा वाकदी की एक और बहुत मशहूर जो किताब है ना, वो है फुतूह शाम। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने जो है वो बहुत सारे वाक़यात जो है नकल किए हैं कि जब सहाबा कराम ने शाम के ऊपर हमला किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के बाद, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में शाम की तरफ जो है फतूहात हुई थी, तो उन वाक़यात को जो है ना ये फुतूह शाम किताब के अंदर जमा किया गया है। लेकिन उस फुतूह शाम किताब के अंदर भी जो है ना इतनी यानी चूंकि वो भी तारीखी रवायात ही हैं, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो उसको हमारे अकाबरीन जो है वो पढ़ते भी हैं, और जो है वो उनका जिक्र भी करते हैं। हमारे हजरत भी जो है वो फुतूह शाम किताब को बड़ा पसंद किया करते हैं, और एक बयान में फरमाया था कि मेरा दिल चाहता है कि उम्मत का हर नौजवान जो है इस किताब को पढ़े। ठीक है, लेकिन वाकदी की ये किताब है, अल्लामा वाकदी की, और अल्लामा वाकदी की अपनी भी जो सेहत है ना, वो इतनी इतनी ज्यादा ऑथेंटिक है नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा भी एक मसला ये है कि इस तरह की जो तारीखी रिवायात वाली किताबें होती हैं ना, इनके अंदर जो है ना, वो थोड़ी बहुत खुर्द बुर्द भी की गई है, थोड़ी बहुत खुर्द बुर्द, यानी इसके अंदर जो है ना वो यानी तारीखी किताबों को जो है ना वो इबारत को तब्दील कर देना, इस किस्म की हरकतें भी की गई हैं, और ऐसे गैर महसूस अंदाज में की जाती हैं कि किसी आदमी को पता ना चल सके, ठीक है। तो फुतूह शाम किताब के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें मिलती हैं कि जो कि सही नहीं है, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम किसी और मौके के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे। तसव्वुफ की कुछ किताबें, उनके साथ भी ये मामला हुआ है कि उनके अंदर जो है ना वो गैर मुस्लिमों ने, जिनमें यहूदी ही होते हैं इस किस्म की हरकतें करने वाले, तो उन्होंने तसव्वुफ की कुछ किताबों के अंदर भी जो है ना वो आगे पीछे मसला किया है, ठीक है। और फिर उसके जरिए से जो है ना वो बिदआत को साबित करने की कोशिश करी है, हालांकि असल किताब के अंदर ऐसा था नहीं, ठीक है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के जो अरबी मतन है उसमें तो ऐसा नहीं मिलता, लेकिन इस आजिज ने खुद जो है वो उसके एक अंग्रेजी तर्जुमे को पढ़ा, इमाम गजाली के क्या कहते हैं जो अहया उल उलूम है उसके अंग्रेजी तर्जुमे को पढ़ा, उस अंग्रेजी तर्जुमे के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ बात लिखी हुई थी, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल गलत बात लिखी हुई थी, मैं मुझे पता नहीं था कि असल किताब में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ करके अंदाजा हो गया कि ये सही नहीं है, ये तो शरीयत के खिलाफ जा रही है वाली बात। तो जब जो है असल किताब को देखा ना, तो पता चला कि वाकई उसने तर्जुमा जो है वो डिलिबरेटली गलत तर्जुमा किया हुआ था, ठीक है ना, जो कि शरीयत के खिलाफ जा रहा था। तो किताबों के अंदर जो ये तहरीफात वाला मसला है ना, ये मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इसे हिफाजत फरमाई है, और अल्लाह ताला ने हदीस मुबारक की इसे हिफाजत फरमाई है, लेकिन तारीख के अंदर जो है ना वो ऐसी हिफाजत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से तारीख की कोई की किताब के अंदर कोई ऐसी बात अगर नजर आए जो कि कुरान मजीद और हदीस मुबारक से टकराती हो, तो बजाय इसके के हदीस के बारे में शुबा करना शुरू हो जाए कि भाई तारीख में तो ऐसा हुआ था, तारीख में तो वैसा हुआ था, तो हदीस के बारे में शुबा करना शुरू हो जाए, नहीं भाई, हदीस के बारे में शुबा नहीं करना शुरू हो, उस तारीख की किताब के बारे में शुबा करो, क्योंकि वो हदीस से टकरा रही है। हदीस जो है वो बिल्कुल 100% कन्फर्म है, तारीख की कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बहरहाल, यहाँ पर तो ये एक जमनी बात हो गई। तो इस वाकये का क्या तफसील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहे रोम कैसर के पास अपना नाम मुबारक देकर, नबी अलैहि सल्लम ने फतेह मक्का के बाद जो बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े कबीलों के सरदार थे ना, रुसा, ठीक है, रईस किस्म के जो लोग थे, उनकी तरफ फिर अपने सहाबा को अपने खतूत दे करके भेजा था, उनको इस्लाम की तरफ दावत देने के लिए। तो उनमें से एक जो है वो रोम का बादशाह, जिसका के टाइटल जो है वो कैसर, सीजर, अंग्रेजी में उसको सीजर कहते हैं कैसर को, जिस तरह हबशा के बादशाह को जो है वो नजाशी कहा जाता है, वो उसका टाइटल था, असल में नाम नजाशी नहीं था, असल में तो नाम उसका जो भी था मुझे याद नहीं है, लेकिन टाइटल जो भी बादशाह आता था उसको नजाशी कहते थे, ठीक है। उसी तरह रोम का जो भी बादशाह आता था उसका असल नाम जो भी होता था, लेकिन उसको कैसर कहा जाता था। तो कैसर रोम के पास अपना नाम मुबारक देकर, दाहिया कल्बी भी इनको कहा जाता है। तो उसके बाद हजरत दाहिया रजवतान के खतूत पहुंचाने और शाहे रोम तक पहुंचने और उसके साहेबे अक्लो फरासत होने का तफसीली वाकया बयान किया, जो सही बुखारी और हदीस की सब मोतबर कुतुब में मौजूद है, जिसके आखिर में है कि शाहे रोम हिरकल ने, हिराकुलस उसका उसका नाम था, तो हिरकल ने नामे मुबारक पढ़ने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात की तहकीक करने के लिए अरब के उन लोगों को जमा किया जो उस वक्त उनके मुल्क में बग़र्ज़े तिजारत आए हुए थे। शाही हुक्म के मुताबिक अबू सुफियान इब्न हर्ब, ठीक है, जो बाद में मुसलमान हो गए थे से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनके रुफका जो उस वक्त मशहूर तजारती काफिला लेकर शाम में आए हुए थे, वो हाजिर किए गए, ठीक है ना। उस वक्त जो है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो मुसलमान नहीं हुए थे और वो तजारती काफिले के साथ वहां पर मौजूद थे, ईलिया शहर के, या ईलिया शहर ही होगा वो बैतुल मुकद्दस का, तो ये वहां पे जाया करता था कैसर रोम। असल में तो इसका जो कैपिटल था वो तो यानी कॉन्स्टेंटिनोपल होता था, कुस्तुनतुनिया। लेकिन ये जो है ना वो बड़ा डिवाउट किस्म का ईसाई था, ठीक है, और बड़ा जो है ना ये यानी बैतुल मुकद्दस जो है वो, जैसे हज उमरा करने के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं ना, उसी तरह ये जो है वो बार बार जो है वो इलिया शहर में बैतुल मुकद्दस में जाया करता था। तो ये वहीं पे मौजूद था उस वक्त जब ये खत इसके पास पहुंचा, तो इसने जो है वो इनको बुला लिया, क्या नाम है, अबू सुफियान रज़वान को, तो वो हाजिर किए गए। शाह हिरकल ने उनसे वो सवालात किए जिनकी तफसील सही बुखारी व मुस्लिम में मौजूद है। अबू सुफियान की दिली ख्वाहिश ये थी कि वो इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुछ ऐसी बातें बयान करें जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकारत और बेहैसियत होना जाहिर हो जाए, ठीक है। मगर अबू सुफियान कहते हैं कि मुझे अपने अपने इस इरादे से कोई चीज इसके सिवा माने नहीं थी। अच्छा सॉरी, ये जिसने थोड़ी देर पहले कहा ना कि फतेह मक्का के बाद, फतेह मक्का के बाद तो खतूत रवाना किए थे, लेकिन ये वाला जो वाकया है ना ये उससे बहुत पहले का है, ठीक है, बल्कि ये गालिबन जो है वो 6 हिजरी का वाकया है, ठीक है, जब ये दाहिया कल्बी रतानों को वहां पे भेजा था। तो 6 हिजरी में तो अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे ना। यार ये कि यार जस्ट कंफ्यूज ही कर रहा है ओवरऑल। पता है मक्का कब हुई थी? 10 हिजरी, वो तो नहीं, वो तो पता है मक्का तो 8 हिजरी में हुई थी ना। तो हाँ ये वाकया फिर 6 हिजरी का कही होगा। तो अबू सुफियान कहते हैं कि मुझे अपने इस इरादे से कोई चीज इसके सिवा माने नहीं थी कि मुबादा मेरी जुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसका झूठ होना खुल जाए, ठीक है, और मैं बादशाह की नजर से गिर जाऊं। इसको इनको जो है ना वो मसला ये पड़ा हुआ था कि मेरी रेप्यूटेशन खराब ना हो जाए, ठीक है ना। अब एक ताजर की, बल्कि तिजारती काफिले के सरदार की जो है वो रेप्यूटेशन अगर खराब हो जाए, ठीक है, तो जाहिर है इसका मतलब ये है कि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसे उसके माल की जो है ना वो क्वालिटी के ऊपर फिर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। और बादशाह के सामने अगर ऐसा मामला हो जाए तो बादशाह ने तो फिर अपने मुल्क वालों को बता देना है कि भाई इस बंदे से डील ना करना। तो देर वॉज अ लॉट एट स्टेक, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना अबू सुफियान वॉज बेसिकली अवॉइडिंग टू लाई अगेंस्ट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो वो सब बहुत उनको ख्याल था कि मैं बादशाह की नजर से गिर जाऊंगा और मेरे साथी भी हमेशा मुझे झूठा होने का ताना दिया करेंगे, ठीक है ना। उस वक्त तो अगर ना भी हुआ तो लोग मुझे फिर यानी ताना दिया करेंगे, और इन लोगों को जो है ना वो तानों का बड़ा खौफ होता था, ठीक है। ये जो है ना कि दूसरा बंदा मुझे ताने दे किसी चीज के ऊपर, जैसे आजकल जो है ना वो हम हक बात से क्यों अपने आप को रोक लेते हैं, तानों के खौफ की वजह से, ठीक है। तो हम तो मुसलमान हैं, है ना, हमें तो अल्लाह को जवाब देना है, हम तो यानी अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन लोगों के तानों की वजह से जो है ना वो हम हक को छोड़ देते हैं। और ये जो लोग थे काफिर थे, ना अल्लाह को सही तरह से मानते थे बल्कि शिर्क करते थे, ना नबी अलैहिस्सलाम को मानते थे, ठीक है, लेकिन ये लोग जो है ना वो यानी झूठ के ऊपर ताना बर्दाश्त नहीं करते थे, ठीक है, झूठ के ऊपर ताना कि भाई ये झूठा कोई हमें हमें कहेगा। अलबत्ता मुझे उस वक्त ख्याल आया कि इसके सामने वाकया मेराज बयान करूं जिसका झूठ होना बादशाह खुद समझ लेगा, ठीक है, यानी वो है इतना नाउजुबिल्लाह जिसको कहते हैं ना आउटरेजस, ठीक है ना, बिल्कुल ही यानी मा फौकुल फितरत किस्म का वाकया है। तो जब बादशाह उस वाकये को सुनेगा ना तो खुद ही कहेगा यार ये बंदा तो सही नहीं है, इस तरह की बातें कर रहा है, ठीक है। तो ये सोच करके जो है ना वो अबू सुफियान ने ये मेराज का वाकया बादशाह के सामने बयान किया। हाँ जज़ाकुमुल्लाह, सुलह हुदैबिया की बात, हाँ फतेह मक्का नहीं, मैंने गलत ही कहा था, वो सुलह हुदैबिया से जो एक वो हो गया था ना, क्या कहते हैं, एक अमन व अमान का माहौल पैदा हो गया था, तो उस पर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर ये बादशाह बाहर के लोगों को दावत व तबलीग का सिलसिला फिर शुरू किया था। उससे पहले तो जंगें, लड़ाइयाँ, गजबे उहद हो रहा है, गजबे खंदक हो रहा है, दूसरे इतने सारे गजवात हो रहे हैं, कभी कहीं से लड़ाई, कभी कहीं से लड़ाई, कभी कहीं से लड़ाई। तो सुलह हुदैबिया के बाद फिर आपसे ने खुल करके दावत तबलीग जो है ना वो दूर दूर तक शुरू करी थी। जजाकुल्लाह, वो ज़ाहिर है 6 हिजरी में ही सुलह हुदैबिया हुई थी। अच्छा, तो अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं उनका एक मामला आपसे बयान करता हूँ जिसके मुताबिक आप खुद मालूम कर लेंगे कि वो झूठ है। ठीक है, हिरकल ने पूछा कि वो क्या वाक़ है। अबू सुफियान ने कहा कि ये मुद्दई नबूवत ये कहते हैं कि वो एक रात में मक्का मुकरमा से निकले और आपकी इस मस्जिद बैतुल मुकद्दस में पहुंचे और फिर इसी रात में सुबह से पहले मक्का मुकरमा में हमारे पास पहुंच गए। ठीक है ना, आप देखिए नऊज़ुबिल्लाह कितनी अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं ना। ऐसा शख्स जो है वो नबी कहलाने का मुस्तहिक है, इस तरह से उन्होंने अपना केस पेश किया। ठीक है, ईलिया बैतुल मुकद्दस, यानी बैतुल मुकद्दस को इन्होंने नाम ईलिया रखा हुआ था। ईलिया जो है ना, ये असल में इब्रानी जुबान के अंदर अल्लाह ताला को क्या कहते हैं, ईला, या इस तरह कहते हैं ना, ईला समथिंग लाइक दैट। तो ईलिया जो है ना, वो खुदा का शहर। ईलिया को ईलिया क्यों कहते थे? क्योंकि ईला का शहर था। ठीक है, खुदा का शहर था तो उनके नजदीक है, मतलब यही सबसे ज्यादा, जैसे मक्का मुकरमा को जो है वो अल्लाह ताला का शहर है ना, हरम मक्का और अल्लाह ताला का घर है वहां पे, उसी तरह इनका मामला बैतुल मुकद्दस के साथ था। तो ईलिया का सबसे बड़ा आलिम उस वक्त शाह रोम हिरकल के सरहाने पर करीब करीब खड़ा हुआ था। उसने बयान किया कि मैं उस रात से वाकिफ हूँ। शाह रोम उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और पूछा कि आपको उसका इल्म कैसे और क्यों कर हुआ। तो उसने अर्ज किया कि ये मेरी आदत थी कि मैं रात को उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक बैतुल मुकद्दस के तमाम दरवाजे बंद ना कर दूं। ठीक है, मस्जिद की जो है वो तमाम दरवाजे मैं लॉक ना कर दूं। उस रात मैंने हस्ब आदत तमाम दरवाजे बंद कर दिए, मगर एक दरवाजा मुझसे बंद नहीं हो सका। तो मैंने अपने अमले के लोगों को बुलाया, उन्होंने मिलकर कोशिश की मगर वो उनसे भी बंद ना हो सका। दरवाजे के कवाड़ अपनी जगह से हरकत ना कर सके। ऐसा मालूम होता था कि जैसे हम किसी पहाड़ को हिला रहे हैं, यानी पहाड़ को जिस तरह से आप कोशिश करें वो अपनी जगह से नहीं सरकता ना, तो उसी तरीके से ये दरवाजे जो हैं वो अपनी जगह से सरक नहीं रहे थे। मैंने आजिज होकर कारीगरों और नज्जारों को बुलाया, कारपेंटर्स को। उन्होंने देखकर कहा कि इन कवाड़ों के ऊपर दरवाजे की इमारत का बोझ पड़ गया है, अब सुबह से पहले इसके बंद होने की कोई तदबीर नहीं है, सुबह को हम देखेंगे कि किस तरह किया जाए। मैं मजबूर होकर लौट आया और दोनों कवाड़ उस दरवाजे के खुले रहे। सुबह होते ही मैं फिर उस दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाजा यानी दरवाजे मस्जिद के पास एक पत्थर की चट्टान में रोजन किया हुआ है। रोजन का मतलब जैसे ड्रिल किया हुआ है ना, ड्रिल करके आप सुराख बनाते हैं उसके अंदर, तो रोजन किया हुआ है और ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कोई जानवर बांध दिया गया है, यानी जानवर बांधा गया है यहाँ पर। उस वक्त मैंने अपने साथियों से कहा था, यानी जब जानवर कोई बनता है तो कुछ जो है वो आपको नीचे कुछ गिरा वगैरह नजर आता है, कुछ ऐसे उसके पैर के निशान नजर आते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने साथियों से कहा कि आज इस दरवाजे को अल्लाह ताला ने शायद इसलिए बंद होने से रोका है कि कोई नबी यहाँ आने वाले थे। और फिर बयान किया कि उस रात आपने हमारी मस्जिद में नमाज भी पढ़ी है, उसके बाद और तफसीलात बयान की हैं। ठीक है ना, यानी जाहिर है ये एक रिलीजियस पर्सनालिटी थी और उसका जो है वो बिलीफ था कि यहाँ पर जो है वो नबियों का आना जाना रहता है और ये जो है वो नबियों की आमाजगा है वगैरह। तो अब इसको आखिरी नबी का तो उसके जहन में बात नहीं होगी, लेकिन हो सकता है ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा हो सकता है जो है वो खजर अलैहिस्सलाम आए हों, हो सकता है जो है वो कोई और नबी आए हों, है ना। तो इस तरह से इसने ये बात कर दी, यानी ईलिया के सबसे बड़े आलिम ने ये बात करी। ठीक है, तो अब जाहिर है जब बादशाह के सामने बात हो गई, बादशाह के पास जो है ना वो सारी दलीलें इकट्ठी हो गई थी, तो हेराक्यूलस ने जो है ना वो अपने लोगों के सामने खुद इकरार किया था कि ये ही आखिरी नबी हैं। ठीक है, लेकिन इसने नबी अलैहिस्सलाम को अपना इकरार जो है ना वो नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को नहीं कहा। ठीक है, कि मैं आपके हाथ पर जो है वो बैत करता हूँ और मैं जो है ना वो आपकी यानी नबुवत का की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। ठीक है ना, ये इसने क्यों कहा, क्यों क्यों नहीं किया, हालांकि इसको 100% कन्फर्म हो चुका था और इसने अपनी जुबान से अपने साथियों के सामने इकरार कर लिया था। ये इसने क्यों नहीं किया फिर नबी अलैहिस्सलाम के सामने इकरार, क्योंकि इसको पता था कि फिर मुझे नबी अलैहिस्सलाम को यानी जो दुनियावी सल्तनत है ना वो मेरे हाथ से चली जाएगी, ठीक है, और ये जो है ना वो फिर मुझे मुसलमानों के हवाले करना पड़ेगा, नबी अलैहिस्सलाम के हवाले करना पड़ेगा, और इसके लिए ये तैयार नहीं था, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है वो फिर इसकी बर्बादी का सबब बन गई। नबी अलैहिस्सलाम ने इसके इकरार को जो कि इसने अपने साथियों के सामने कर लिया था, नबी अलैहिस्सलाम को भी उसकी इत्तला हो गई थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल नहीं किया और फरमाया कि इसने कुफ्र किया है, ठीक है। तो ये काफिर ही रहा और कुफ्र के ऊपर ही इसकी मौत आई, हत्ता के जो अकीदे की और यानी अकीदे की किताबें होती हैं तो उनके अंदर जो है ना वो ईमान की तो एक ही किस्म होती है, ईमान की किस्म कोई दो तीन नहीं है, एक ही किस्म है ईमान की, है ना, कि जैसे सहाबा कराम ईमान लेकर के आए वैसे ईमान है। लेकिन कुफर की बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ किस्में हैं कुफर की, ठीक है ना। तो उनमें से कुफर की एक किस्म जो है ना वो ऐसा कुफर होता है कि इंसान अपनी जुबान से इकरार कर दे लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को सबमिट ना करे, ये भी कुफर होता है ना। और इस कुफर के ऊपर जो मिसालें दी जाती हैं किसकी, इसकी ये हिराक्यूलस की एक मिसाल दी जाती है, ठीक है, कि ये जो है वो उसने इस किस्म का कुफर किया था। बहरहाल इसरा व मेराज की तारीख, इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में फरमाया कि मेराज की तारीख में रिवायात बहुत मुख्तलिफ हैं, यानी इसकी डेट क्या है, यहाँ तारीख से मुराद डेट। मूसा बिन उकबा की रिवायत यह है कि ये वाकया हिजरत मदीना से 6 माह कबल पेश आया, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि हज़रत खदीजा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात नमाजों की फर्जियत नाजिल होने से पहले हो चुकी थी। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात का वाक़िया बेअसत नबवी के 7 साल बाद हुआ है। बाज़ रिवायात में है कि वाक़िया मेराज बेअसत नबवी से 5 साल बाद हुआ है। इब्ने इसहाक कहते हैं कि वाकया मेराज उस वक्त पेश आया जब इस्लाम आम कबाइल अरब में फैल चुका था। उन तमाम रिवायात का हासिल ये है कि वाकया मेराज हिजरत मदीना से कई साल पहले का है, ठीक है ना। बेसिकली जो है वो यानी है तो ये हिजरत मदीना से पहले का है 100%, लेकिन नबूवत के 5वें साल में हुआ कि नबूवत के 7वें साल में हुआ कि नबूवत के 10वें साल में हुआ, आम जो सीरत के किताबों के अंदर जो समझा जाता है और पढ़ा जाता है ना वो ये नबी नबूवत के जो है वो क्या कहते हैं 10वें साल के अंदर, जब जो आमुल हुजुन का साल कहलाता है, ठीक है, यानी जिस साल में नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो ताइफ गए और ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, ठीक है, फिर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की के जो जो दो सपोर्टर्स थे, सबसे बड़े सपोर्टर्स, एक तो ख्वाजा अबू तालिब चचा और दूसरी जो है वो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों का इंतकाल हो गया, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत ज्यादा गम का साल था। अल्लाह ताला ने इस गम को हल्का करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एक तो कुरान की आयात भी नाजिल फरमाई और दूसरा नबी अलैहिस्सलाम को मेराज नसीब फरमाई, और इस मेराज के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो यानी जाहिर है ये इतना बड़ा मुकाम जो कि आज तक किसी और को इतना बड़ा मुकाम नहीं दिया गया था, ठीक है। तो हरबी कहते हैं कि वाकया इसरा व मेराज रबीउल सानी की 27वीं शब में हिजरत से 1 साल पहले हुआ है, और इब्न कासिम ज़हबी कहते हैं कि बेअसत से 18 महीने के बाद ये वाकया पेश आया है, ठीक है। 18 महीने का मतलब क्या कि 40 साल के नबी अलैहिस्सलाम थे जबकि आप के ऊपर वही शुरू हुई है, तो उसके 18 महीने बाद यानी बेसिकली अगले ही 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद यानी। तो हजरात मुहद्दिसीन ने रिवायात मुख्तलिफ जिक्र करने के बाद कोई फैसला कुन चीज़ नहीं लिखी, और मशहूर आम तौर पर यह है कि माह रजब की 27वीं शब शब मेराज वल्लाह सुब्हानहु तआला आलम, है ना। और हमारे कल्चर के अंदर जो है वो 27वीं शब जो है वो फिर शब मेराज के तौर पर बाकायदा मनाई जाती है, जबकि उलमाए कराम जो है वो हर साल लोगों को यही बात याद दिलाते हैं कि भाई कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं है 27वीं शब की, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है ना वो जो जो एक्स्ट्रा किस्म के इबादत और मामलात वगैरह किए जाते हैं तो ये भी सहाबा किराम से साबित नहीं है। तो आप लोग क्यों उस तरह से किया करते हैं, ठीक है ना। बस ज्यादा से ज्यादा अगर करना ही है कुछ तो वाकई मेराज जो है वो उसको बयान कर लो भाई, इल्म बढ़ाओ एक दूसरे का। और वहां पे जो 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 नबी अलैहिस्सलाम के साथ वाकयात पेश आए थे, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है उस उन वाकयात के तकरार से आप कर लें अगर आप कुछ ना कुछ करना ही है, ठीक है। और आप नमाज की पाबंदी करें, जो नमाज जो है वो मेराज की रात में फर्ज की गई थी, अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफा मुसलमानों को जो मिला था, तो ये सब तो करना नहीं है, चिरावा करना है, ठीक है ना। और जो है वो पता नहीं क्या हलवे बनाने और क्या करना है इसके अंदर। अच्छा, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा। हजरत अबू दर गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया है कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मस्जिद हराम। फिर मैंने अर्ज किया कि उसके बाद कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मस्जिद अक्सा। तो मैंने दरियाफ्त किया कि इन दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत का फासला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 40 साल, ठीक है। फिर फरमाया कि मस्जिदों की तरतीब तो ये है, क्या मतलब कि 40 साल बाद मस्जिद अक्सा की तामीर हुई है, मस्जिद हराम की मस्जिद की तामीर जो है ना, यानी जो जो बाकायदा क्या कहते हैं दीवारें खड़ी की गई काबतुल्ला की, ठीक है, तो वो मस्जिद हराम की तामीर हो गई। यानी कि चारों तरफ जो है वो जिस तरह आजकल जो है वो मस्जिद की इमारत नजर आती है वो नहीं, बल्कि काबतुल्ला की दीवारें जो खड़ी की गई ना, तो वो जब जब भी खड़ी की गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खड़ी करी, ठीक है, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाली तामीर की बात हो रही है, तो उसके 40 साल के बाद जो है वो मस्जिद अक्सा की जो है वो तामीर की गई, ठीक है। तो तरतीब तो ये है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है, जिस जगह नमाज का वक्त आ जाए वहीं नमाज अदा कर लिया करो, ठीक है। तो ये आप ससरम के स्पेशलिटीज में से एक स्पेशलिटी है कि पूरी जमीन को आप ससरमत के लिए मस्जिद बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलीसा के अंदर या सिर्फ जो है वो जो जो सिनेगॉग होता है यहूदियों का, जिस तरह वो खाली वहीं जा करके इबादत कर सकते हैं, बाकी जगहों पर जो है वो अल्लाह ताला से दुआएं शुआएं तो मांग सकते हैं, लेकिन जो इबादत का उनका तरीका है वो आप मखसूस जगहों पर ही जाके कर सकते हैं। मुसलमान के साथ ऐसा नहीं है, मुसलमान किसी भी जगह को मुसल्ला बना करके वहाँ पे नमाज पढ़ सकता है। इमाम तफसीर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की जगह को पूरी जमीन से 2000 साल पहले बनाया है, बैतुल्लाह की जगह को, ठीक है, सिर्फ कब्रिस्तान और वॉशरूम छोड़कर ऐसा है नहीं। कब्रिस्तान में आप कब्र को सजदा ना करें, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर नमाज पढ़ने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, ठीक है ना। बल्कि क्या कहते हैं जनाजे की नमाज तो वैसे भी बहुत सारे, यानी अगर आप मस्जिद में नमाज ना हुई भी हो तो कब्रिस्तान में जाके जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कब्र को सामने रख करके उसको सजदा करने की 100% पाबंदी है, लेकिन कब्रिस्तान में कोई पाबंदी नहीं है। और वॉशरूम जो है ना, वॉशरूम का मतलब क्या होता है, जहां पर नजासत पड़ी हुई हो, ठीक है, तो जहां पे नजासत पड़ी हो वहां पे आप नमाजें पढ़ सकते हैं, और उसके आसपास भी नमाज जो है वो मना की गई है, अल्लाह का जिक्र करने से मना किया गया जहां पे नजासत पड़ी हुई हो, ठीक है। तो वॉशरूम की भी तो डेफिनेशन होती है ना, कोई क्या मतलब वॉशरूम। तो इमाम तफसीर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, अच्छा, तो काबतुल्ला जिस जमीन के ऊपर है, यानी जिस पैच ऑफ द लैंड के ऊपर है, ठीक है ना, तो वो पैच ऑफ द लैंड जो है ना वो पूरी जमीन से 2000 साल पहले बना है, ठीक है ना। ये जमीन की तखलीक जो है वो कैसे हुई है कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो ये वाला, यानी गोया कि ये एरिया जो है ना ये सबसे पहले बनाया, और फिर वहां से जो है ना वो जमीन फैलनी शुरू हुई, ठीक है ना, और वो फैलते फैलते जो है वो फिर बाकी पूरी की पूरी अर्थ जो है ना वो बनी है, ठीक है। और इसके अंदर इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जो है वो 2000 साल लगे, ठीक है। और इसकी बुनियादें सातवीं जमीन के अंदर तक पहुंची हुई हैं, ठीक है। तो बहरहाल इस मस्जिद हराम की बुनियादें, अब ये जो दीवारें हैं उनकी बुनियादें नहीं, बल्कि उन दीवारों के जो की जो बुनियादें हैं ना, जो कि एक्चुअली कभी ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जो ये दीवारें खड़ी करी हैं ना, वो उन बुनियादों के ऊपर ही खड़ी करी हैं, तो वो बुनियादें जो है ना वो यानी तह ज़मीन के अंदर जा रही हैं और सातवें ज़मीन के अंदर तक पहुँची हुई हैं, यानी बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ तक वो बुनियादें जाती हैं।
और मस्जिद अक्सा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया है। रवाहु नसाई बा इसनादे सही अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला। अच्छा, गोया की दीवारें जो हैं ये तो बाद में टूटती गईं, फिर बनती गईं, फिर टूटती गईं, फिर बनती गईं, लेकिन उन दीवारों की जो फाउंडेशंस है ना, ये फाउंडेशंस जो हैं वो अल्लाह ताला ने 2000 साल पहले उस जमीन के साथ ही वो फाउंडेशंस बना दी थी, और फिर वहां से जो है ना वो पूरी एक्सपैंड होते होते पूरी जमीन बनी है। जबकि मस्जिद अक्सा जो है वो तो जो जो एक्चुअल जो मस्जिद है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई, और जिसको हैकले सुलेमानी भी उसका एक हिस्सा था जो कि फिर बाद में खत्म कर दिया गया वगैरह, उसकी तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह। ये बस पैराग्राफ पढ़ के क्लास खत्म कर देते हैं क्योंकि टाइम मुकम्मल हो गया। अच्छा, और फरमाते हैं कि मस्जिद हराम उस मस्जिद का नाम है जो बैतुल्लाह के गिर्द बनी हुई है, और बाज़ औक़ात पूरे हरम को भी मस्जिद हराम से ताबीर किया जाता है। इस दूसरे मानी के एतबार से दो रिवायतों का यह तआरुज़ भी रफा हो जाता है कि बाज़ रिवायत में आपका इसरा के लिए तशरीफ ले जाना हजरत उम्मे हानी के मकान से मनकूल है, और बाज़ में हतीम बैतुल्लाह से। अगर मस्जिद हराम के आम मानी लिए जाएं तो ये कुछ मुस्तअबद नहीं कि पहले आप उम्मे हानी रज़ी अल्लाह के मकान में हो, वहां से चलकर हतीम काबा में तशरीफ लाए, फिर वहां से सफरे इसरा की इब्तिदा हुई। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ठीक है, तो ये चीज हम पिछली क्लास में भी हमने थोड़ा इसके ऊपर बात कर ली थी। उम्मे हानी जो है नबी अलैहिस्सलाम की कजन थी, चचेजात कजन, बड़ी उम्र की थी, बल्कि शायद सबसे बड़ी औलाद थी ख्वाजा अबू तालिब की। इनकी जो है वो शादी हुई हुई थी एक शख्स से जो कि मुसलमान तो नहीं हुआ था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत बहुत किया करता था, लेकिन मुसलमान नहीं हुआ वो भी। ठीक है, तो उनके घर में रात का खाना खाया, इशा का जो वक्त था उसके बाद जो है नबी अलैहिस्सलाम वहीं पर सो गए, और वहीं पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो आए, छत से दाखिल हुए और आप सलम को उठा करके जो है वो काबतुल्ला लेकर के गए, और वहां पे बुर्राक पे सवार किया और वहां से लेकर के बैतुल मुकद्दस गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास रोकते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में। आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मे हानी मुसलमान हो गई थी, जी हाँ।